सबक नंबर चार। अजीज सामईन, अस्सलामु अलैकुम। हम खुदाए पाक के बाबरकत नाम से आपको सलाम अर्ज करते हैं, जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो ये चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उसी पर चले जो उसने कायम की है, ताकि उसको अबदी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हम सच्चाई की राह के नाम से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने सीखा कि खुदाए पाक के नबियों ने फरिश्तों के मुतालिक और शैतान के बारे में पाक सहीफों में क्या लिखा है। हमने ये भी सीखा कि इब्तदा में खुदा ताला ने लाखों रूहों को खल्क किया, जिन्हें फरिश्तों का नाम दिया गया। उन फरिश्तों में एक फरिश्ता ऐसा था जो दूसरे सब फरिश्तों से ज्यादा होशियार और हसीन था। उस फरिश्ते का नाम लूसीफर था। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब लूसीफर खुद को सबसे बड़ा समझने लगा और खुदा ताला के मर्तबे के बराबर खड़ा होने लगा और सोचने लगा कि मैं ही खुदा हूँ। लूसीफर के इस गुनाह में और भी बहुत सारे फरिश्ते उसके पीछे पीछे चलने लगे। तब खुदावंद ताला ने बागी फरिश्तों की इस बगावत को बर्दाश्त ना करते हुए शैतान को और उसके साथी बागी फरिश्तों को अपनी हजूरी से खारिज कर दिया। लूसीफर के नाम को तब्दील करके उसे शैतान का नाम दिया गया, जिसका मतलब है नाफरमान। जब खुदा ताला ने शैतान और उसके फरिश्तों को अपनी हजूरी से खारिज किया, तो इसके बाद उसने उनके लिए जहन्नुम की आग पैदा कर दी, जो कभी बुझने की नहीं। एक रोज खुदावंद ताला शैतान को और उसके साथी फरिश्तों को आग में डाल देगा। तहम शैतान को अब तक आग में नहीं डाला गया। वो दुनिया में हर इंसान को हत्तल मकदूर धोखा देने की कोशिश में लगा रहता है, ताकि वो भी उसकी पैरवी करके हलाक हो जाए। अम्बिया इकराम के पाक सहीफों की तालीम का आज हमारा ये चौथा सबक है। तो रैत शरीफ की पहली किताब पैदाइश के पहले बाब की पहली दो आयात में फरमाया गया है, खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वैरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। इब्तदा में जब खुदाए पाक ने जमीन और आसमान को पैदा किया, तो जमीन पर कुछ भी न था। हर तरफ वैराना था, अंधेरा था और जमीन सुनसान पड़ी हुई थी। किसी चीज का भी वजूद नहीं था, सिर्फ शैतान था या फिर उसके फरिश्ते थे। ताहम खुदावंद ताला ने इंसानों को पैदा करने का मंसूबा बनाया, ताकि वो उसे जाने, उससे प्यार करें और हमेशा तक उसके फरमा बरदार रहें। तो अजीजो, इंसान की पैदाइश से पहले खुदा चाहता था कि वो एक ऐसी हसीन और जमील दुनिया बनाए जहां इंसान कामिल खुशहाली की जिंदगी गुजारे। आज हम देखेंगे कि खुदाए करीम ने जिन इंसानों को पैदा करने का मंसूबा बनाया, उनके लिए उसने दुनिया को कैसे बनाया और फिर किस तरह से खूबसूरती और रौनक बख्शी। खुदावंद ताला ने दुनिया को कैसे बनाया, आओ कलामे इलाही की रोशनी में से देखें। कलामे खुदा में हमें यूं मिलता है, खुदावंद ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समुन्दर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया। अब आए देखते हैं कि तौरात शरीफ के पहले बाब में खुदा ताला ने इन 6 दिनों में क्या क्या बनाया। पहले दिन की बाबत कलामे खुदा का बयान है, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई। सो पहला दिन हुआ। पहले दिन खुदा ताला ने फरमाया कि रोशनी हो जा। खुदा ने जमीन को हुक्म दिया, जो आसमान पर एक बड़े गेंद की मानिंद थी, कि वो 24 घंटों में एक चक्कर पूरा करे। इसी वजह से 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात। रोशनी को तारीकी से जुदा करते हुए खुदाए पाक ने पहले दिन कैसा बड़ा काम किया। दूसरे दिन की बाबत खुदाए ताला का कलाम फरमाता है, खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ, और खुदा ने फिजा को आसमान कहा। दूसरे दिन खुदा ताला ने जमीन के इर्द गिर्द आसमान बना दिया, जिसे हम फिजा का नाम देते हैं। फिजा ऐसा आसमान है जो दुनिया को अपने घेरे में लिए हुए है, और इसमें हवा मौजूद है जिसमें हम सांस लेते हैं। यही फिजा हर शय को और हर शख्स को सूरज की तपिश से और दूसरी बहुत सी मोहलिक बीमारियों से और खराबियों से बचाती है। इस खास फिजा और हवा के बगैर, जिसे खुदा ताला ने दूसरे दिन बनाया, कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। खुदाए पाक ने समुन्दर, खुश्की और पौधे बनाए। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा होकर खुशकी नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुशकी को जमीन कहा और पानी जो जमा हो गया था उसको समंदर, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो जमीन पर अपने आप में ही बीज रखे लगाए, और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखे और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें उगाया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। फिर तीसरे रोज खुदा कादरे मुतलिक ने समुन्द्रों और दरियाओं को बनाया, और इसी के साथ हजारों दरख्त और पौधे भी पैदा किए जिनमें अलग अलग फल और बीज होते हैं। खुदा ने मजे मजे की कैसी बेशुमार खाने की चीजें बना दी, जैसे आम, केले, नारियल, खरबूजे, टमाटर, गोभी, गाजरें, चावल, मूंगफलियां और खाने की हजारों और चीजें। और खुदा पाक ने जो कुछ बनाया उसकी बाबत उसने यही कहा कि अच्छा है। खुदा जो कुछ पैदा करता है और जो भी काम करता है वो बिल्कुल अच्छा होता है, खूबसूरत होता है और कामिल होता है। इसमें किसी किस्म की कमी नहीं पाई जाती। हम पहले ही जान चुके हैं कि बुराई और गुनाह ऐसे काम हैं जो खुदा नहीं करता, क्योंकि खुदा खुद भला और मेहरबान है और वो हमेशा भलाई के काम करता है और अपने लोगों पर रहीम और मेहरबान है। मुमकिन है कि कुछ लोग ये कहें कि अगर खुदा मेहरबान और भला है तो दुनिया में इस कदर बुराई क्यों है, दुनिया बुराई से भरी हुई क्यों है, इस साल मेरे खेतों में अच्छी फसल क्यों नहीं हुई, मेरा बेटा बीमार क्यों रहता है। अगर खुदा पाक भला और मेहरबान है तो फिर इंसान बदियां क्यों करता है। वाकई ये सवाल बड़े अहम है। कलाम पाक इन सवालों के जवाब बड़े तसल्ली बख्श अंदाज में देता है, जो कि हम अगले इसबाक में सीखेंगे। तहम आज हम इस हकीकत को सामने रखते हैं कि खुदा भला है, और इस हकीकत को सामने रखते हुए खुदा ने जो कुछ बनाया है वो सब कुछ अच्छा और भला है। आइए चंद लम्हों के लिए खुदा के भला होने और मेहरबान होने के बारे में सोचें। हमने अभी अभी सुना कि इस पाक जात ने तीसरे रोज दरख्तों और पौधों को कैसे बनाया। क्या आप जानते हैं कि खुदा ने तीसरे रोज फलदार दरख्तों को क्यों बनाया? क्या खुदा को इन फलदार दरख्तों की जरूरत थी? क्या उसने अच्छे अच्छे मजेदार फलों से लदे हुए दरख्त इसलिए बनाए कि वो भूखा था? नहीं, खुदा जो हर चीज का खालिक और मालिक है, उसे किसी शय की भूख और प्यास नहीं, ना ही वो किसी शय का जरूरतमंद है। जब उसे ना किसी शय की भूख है ना जरूरत है, तो फिर उसने इन दरख्तों को क्यों बनाया? कलाम पाक हमें सिखाता है कि खुदा मेहरबान है और उसने अपनी मेहरबानी की खातिर इंसान के लिए ये सब कुछ बनाया, इसी इंसान के लिए जिसे उसने छठे दिन बनाया था। क्या आप खुदा ताला की मेहरबानी को पहचान सकते हैं? अगर आप मीठा और रस भरा आम चखें या फूल की भीनी भीनी खुशबू सूंगे, तो क्या आप ना पहचानेंगे कि खुदा ताला भला और नेकी को पसंद करने वाला है? क्या आप किसी दरख्त को देखकर उसके बनाने वाले का शुक्रिया अदा ना करेंगे, क्योंकि उसने वो दरख्त आपके लिए बनाया है? पौधों और दरख्तों के बगैर जिंदगी बेमजा लगती है। अगर दरख्त ना हो तो लकड़ी ना होगी और ना जलाने के लिए ईंधन होगा, ना खाना पकेगा, ना कोई कश्ती बनेगी, ना मकान की छत, ना दरवाजे। दरख्त नहीं होंगे तो धूप की शिद्दत से बचने के लिए साया ना मिलेगा, ना चाय बनाने के लिए पत्ती और ना ही बीमारियों से बचाने वाली दवाइयां। दरख्तों और पौधों के बगैर जिंदगी नामुमकिन दिखाई देगी। खुदा पाक ने हमारी खुशी और शादमानी के लिए जो हजारों अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, इनमें से दरख्त भी एक बड़ी नेमत से कम नहीं। खुदा ताला चाहता है कि हम उसकी नेक और पाक जात को पहचान लें। इसी बात को हजरत दाऊद नबी ने जबूर की किताब में यूं बयान किया है कि आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। अब आज के सबक में हम वक्त गुजरने से पहले ही इस बात को जहन में रख लें। चौथे रोज खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों। खुदा पाक ने सिर्फ हुक्म किया तो आसमान पर सूरज, चांद और सितारे नमूदार हो गए। खुदा पाक ने एक और लफ्ज कहा तो जमीन सूरज के गिर्द घूमने लगी, उसने फिर कहा तो चांद जमीन के गिर्द चक्कर लगाने लगा। खुदा करीम ने दुनिया اور اس کی ہر شے کو خلق کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس کے بارے میں خدا کا کلام کیا فرماتا ہے ذرا دیکھیں۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں کہ پہلے دن خدا پاک نے صرف حکم دیا اور کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ دوسرے روز خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، تو پانیوں کے درمیان فضا ہو گئی۔ تیسرے روز اس نے جو کچھ کہا وہی بن گیا، آگے بھی اسی طرح ہوا۔ اب دیکھیں کہ خدا پاک نے دنیا میں جو کچھ پیدا کیا اس کے لیے اس نے کیا استعمال کیا۔ خدا پاک نے اپنے حکم دینے کے علاوہ، یعنی اپنے کلام کے علاوہ اور کچھ استعمال نہیں کیا۔ اس نے جو کچھ کلام سے کہا اور کیا وہ کلام پورا ہوا۔ خدا پاک نے سب کچھ اپنے کلام سے بنایا، اور کلام مقدس سکھاتا ہے خدا پاک نے نہ صرف اپنے کلام سے سب کچھ پیدا کیا بلکہ ان سب کو اپنی قدرت والے کلام سے قائم بھی رکھا۔ اس کے کلام کی قدرت ہے کہ چاند اور ستارے آسمان پر اپنی مقررہ جگہوں پر قائم ہیں۔ اس کے حکم کی بدولت ہی سورج ہر روز اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے اور مقررہ وقت پر ہی غروب ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ کل سورج طلوع ہوگا یا نہیں، تو پھر ہماری زندگی کو کیسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ کلام مقدس سکھاتا ہے کہ خدا پاک نہایت وفادار ہے، یعنی وہ عہد کا پکا ہے، وہ وعدے کو پورا کرتا ہے، وہ بات کا پکا اور قول کا سچا ہے، وہ بات کہہ کر مکر نہیں جاتا اور نہ ہی بدلتا ہے، لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ پانچویں روز خدا پاک نے ہزاروں لاکھوں مچھلیاں اور پرندے پیدا کر دیے۔ کلام پاک کا بیان ہے، اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کی کثرت پیدا کرے، اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے باکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو، اور ان سمندروں کے پانی کو بھر دو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پانچواں دن ہوا۔ چھٹے دن کے بارے میں کلام خدا کا بیان ہے کہ اس نے چھٹے روز جانوروں کو اور انسانوں کو بنایا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس کارنامے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر سکیں۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ اپنا اگلا پروگرام دکھائے۔ ہم بڑے غور سے سیکھیں گے کہ خدا نے انسان کو کیسے اور کیوں بنایا۔ آج ہم نے خدا تعالیٰ کی مہربانی اور بھلائی کا منظر دیکھا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ خدا کے نبی حضرت داؤد نے اپنی زبور کی کتاب میں کیا بیان کیا ہے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ دوستو، کیا آپ نے خدا کی مہربانی کا تجربہ کیا ہے؟ ہر روز ہم طرح طرح کے کھانے کھاتے اور ان کا مزہ چکھتے ہیں، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ہم نے کبھی اس کی مہربانی کا مزہ چکھا اور اسے محسوس کیا ہے؟ اگر آپ واقعی خداوند تعالیٰ کی مہربانی کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے پاک کلام کو سنیے اور اسے مان کر قبول کیجیے۔ خدا پاک اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اگلے سبق میں ہم سیکھیں گے کہ آدمی صرف بدن کا مالک ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر روح بھی ہے۔ ہماری روح کو خدا کے کلام کی خوراک چاہیے۔ خدا کا کلام اچھا ہے اور عجیب کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ہمیں اس کی بھوک محسوس کرنی چاہیے۔ جس طرح آپ کا معدہ خالی ہو تو اسے خوراک کی بھوک لگتی ہے، کیا اسی طرح آپ کی روح خدا کے عرفان اور اس کے کلام کی سچائیوں کو جاننے کی ضرورت محسوس کرتی ہے؟ اگر آپ اسی طرح سے کلام پاک کی بھوک محسوس کرتے رہیں گے، تو آپ کو اسی دنیا میں خدا پاک کا کامل اطمینان اور بھرپور خوشی نصیب ہوگی، اور اوپر آسمان پر ہر طرح کی کرپشن سے پاک میراث ملے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بالکل درست اور سچ بات ہے، کیونکہ خدا رحیم نے خود اس کا وعدہ کیا ہے۔ اس نے فرمایا کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ آمین۔ عزیز دوستو، آپ کا شکریہ کیونکہ آپ نے اس ساری بات چیت کو بڑی توجہ سے سنا اور سیکھا۔ آپ سے پرزور التماس ہے کہ آپ ہمارے اگلے پروگرام میں بھی آئیں، اور ہم اسے سیکھیں گے اور سکھائیں گے کہ خدا پاک نے انسان کو، جو اشرف المخلوقات ہے، کیسے پیدا کیا۔ اور پھر بڑا اہم سوال یہ ہے कि इसने इसे क्यों पैदा किया। खुदाए जुल जलाल आपको बरकत दे और उसने जो आपको सीखने के लिए बड़ा अच्छा मौका दिया है उसको कभी ना भूलने पाए, बल्कि खुदावंद ताला के इरफान में और उसके कलाम की पहचान में रोज बरोज तरक्की करते जाएं। आमीन। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है।